તારીખ 26/5/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 706 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 327
તૃષ્ણા કા પરાભવ કૈસે કરે ઇસ વિષય પર યે પેરાગ્રાફ મેં બહુત સુંદર માર્ગદર્શન દિયા હૈ શ્રીમદજી ને જિસ મુમુક્ષુ કો પત્ર લિખા હૈ ઉસને અપની તૃષ્ણા કી તીવ્રતા કા નિવેદન કિયા હૈ કે મેં તૃષ્ણા કે પ્રવાહ મેં ચલતે હુએ બહે જાતા હું મેરી તૃષ્ણા બહોત હૈ મેં ક્યા કરું કહેતે હૈ કે ભોગ મેં અનાસક્તિ હો એક બાત દૂસરા લૌકિક વિશેષતા દિખાને કી બુદ્ધિ કમ કી જાય તો તૃષ્ણા નિર્બલ હોતી જાતી હૈ કિસી ભી કસાઈ કો અભાવ કે હોને કે પહેલે ઉસકી શક્તિ ઉસકા અનુભાગ ઘટ જાતા હૈ કમ હો જાતા હૈ તો યે કસાઈ નિર્બલ હો જાતી હૈ ઓર નિર્બલ હોને કે બાદ હી ઉસકા અભાવ હો સકતા હૈ બલવાન કસાઈ કા અભાવ હોના આસાન નહીં હૈ ઇતના ક્રમ પડતા હૈ પહેલે કસાઈ નિર્બલ હોતી હૈ ઉસકા રસ ટૂટતા હૈ ઉસકી રુચિ મિટતી હૈ બાદ મેં ઉસકા અભાવ હો સકતા હૈ એક તો ભોગ મેં અનાસક્તિ હો ભોગ મેં તીવ્ર આસક્તિ હોને સે અનેક પ્રકાર કે ભોગ ઉપભોગ કે લીએ તૃષ્ણા જો હૈ વો બઢતી જાતી હૈ આવશ્યકતા બઢતી જાતી હૈ ઇસલિયે ભોગ મેં અનાસક્તિ હો તો ફિર જો ભી પ્રાપ્ત કરના હૈ વો કિસ લીએ કરેંગે જિસમેં આસક્તિ નહીં હૈ ઉસકો પ્રાપ્ત કરને કે લીએ પરિશ્રમ ક્યોં કરે ક્યોં દુખી હોવે ક્યોં આકુલતા કરે એ વાત હો જાતી હૈ કિસી કો ભોગ મેં ઇતની તીવ્રતા નહીં હોતી હૈ ફિર ભી તૃષ્ણા બહોત હૈ ઇસકા યહી કારણ ભી હૈ કે ઉસકો સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરકે સંપત્તિવાન મેં હું એસા દિખાને કા ભાવ રહેતા હૈ અભિપ્રાય રહેતા હૈ ઇસલિયે ભી વો અપના સમાજ મેં અપને કુટુંબ મેં જહાં ભી ઉદય હો જહાં ભી પહેચાન હો વહાં અપની વિશેષતા લૌકિક વિશેષતા લોગ મેં દૂસરો સે મેં થોડા અધિક હું એસે દિખાને કી બુદ્ધિ એસે દિખાને કા અભિપ્રાય વો જો કમ હો જાય તો તૃષ્ણા નિર્બલ હો જાતી હૈ તો ફિર કિસકે લીએ મેં જૈસા હું વૈસા હું લૌકિક માન ક્યા ચીજ હૈ કુછ નહીં હૈ આગે કહેંગે કે ઉસકી તુચ્છતા લગે ક્યા લગે ઉસકી તુચ્છતા લગે યે તો ક્ષુદ્ર બાત હૈ એક શુદ્ર બાત કે લીએ મેરે પરિણામ ભી ક્ષુદ્ર હો જાય એસા મેં દીનહીન નહીં હૈ ઇધર સે દેખે તો મેં તો માત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપ હું કિસી ભી પ્રકાર કા સંબંધી મુજે નહીં હૈ કોઈ માન દે કોઈ અપમાન દે કુછ ભી કરે ઇનકે પરિણામ ઇનકે પાસ હૈ મેરા તો કિસી સે સંબંધ હી નહીં હૈ સંબંધ હો હી નહીં સકતા करना चाहे तो भी संबंध हो ही नहीं सकता। मैं तो ज्ञान मात्र रूप से रहता हूँ, टिकता हूँ, परिणमता हूँ, कोई संबंध किसी के साथ मेरा नहीं है, ऐसी प्रत्यक्ष बात है। अपने ज्ञान स्वरूप को देखे तो ये बात तो प्रत्यक्ष है। इसलिए मान अपमान की जो कल्पना है वो कुछ चीज नहीं है, ये कल्पना है। ये कल्पना बिल्कुल एक धुआं जैसी है, जैसे धुआं को पकड़ नहीं सकते हम, ये कल्पना को पकड़ नहीं सकते। इसकी बुद्धि कम हो जाए तो सहज ही तृष्णा आगे बढ़ने वाली नहीं है। लौकिक मान आदि की तुच्छता समझ में आ जाए कि ये तो तुच्छ बात है, किसी ने मान दिया तो क्या हो गया, मेरे में कुछ आया क्या, मेरे में कोई वृद्धि हुई क्या, कोई विशेषता हो गई क्या मेरे में, कि मैं तो जैसा हूँ वैसा रहा हूँ। मान दिया तो क्या, मान नहीं दिया तो क्या है। किसी के मान देने से मेरी कीमत बढ़ती है और मान नहीं देने से मेरी कीमत घटती है, ये बात बिल्कुल कल्पना जैसी फालतू है। मैं तो जैसा हूँ वैसा अनादि अनंत हूँ, मुझे तो किसी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध है ही नहीं। लौकिक मान आदि की तुच्छता समझ में आ जाए तो उसकी विशेषता नहीं लगती, फिर इसकी विशेषता तुच्छता लगे तो विशेषता नहीं लगे, और इससे इसकी इच्छा सहज में मंद हो जाती है, ऐसा यथार्थ भाषित होता है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये लौकिक विशेषता की जो कल्पना है, भ्रम है, ये जो मिट गया तो फिर संपत्ति मिलाने के लिए, जुटाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो परिणाम में वेग आता है, तीव्रता आती है, रस आता है, ये रस नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं। फिर इसका कोई उपयोग, आवश्यकता कितनी होती है, मामूली आवश्यकता के पीछे इतना बड़ा सारा जीवन व्यतीत कर देना, मनुष्य भाव व्यतीत कर देना, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। बहुत ही मुश्किल से आजीविका चलती हो, क्योंकि आजीविका नहीं चले तो परिणाम में बिगाड़ होने की योग्यता है, बिगाड़ हो जावे, ऐसी सामान्य मुमुक्षुओं को ऐसी योग्यता है कि उसकी आजीविका का प्रबंध नहीं हुए तो उसका परिणाम पहले वहाँ जाएगा कि जैसे कैसे भी मुझे आजीविका के हिसाब से किसी से लाचारी करना नहीं पड़े, दीनता करनी नहीं पड़े, याचना नहीं करनी पड़े। इसलिए बहुत ही मुश्किल से, मैंने करीब करीब, इससे ज़्यादा बचे नहीं कोई बात, आजीविका चले उतना ही आमदनी हुए, बहुत ही मुश्किल से आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षु के लिए वह पर्याप्त है। देखिए ये बात जो कृपाल देव के शब्द में मिलती है, किसी भी आत्मार्थी जीव को एक बहुत बड़ा आधार मिलता है कि बस आजीविका मुश्किल से चलती हो भी मेरे लिए तो पर्याप्त है, विशेष की कोई आवश्यकता मुझे है ही नहीं, कोई जरूरत मुझे नहीं है, आजीविका चले बात खत्म। मैं तो मेरा काम करने के लिए ये भाव है, कोई संपत्ति बढ़ाने के लिए ये भाव नहीं है। अनंत बार संपत्ति बहुत मिली है देवलोक पर्यंत की, राजा हुआ है, बड़ा बड़ा श्रीमंत सेठ हुआ है, आबरू कीर्ति बहुत मिली है, अभी ये भाव तो जो है ये मेरे कल्याण के लिए आगामी सर्वभवों के अभाव के लिए है, ये भाव कोई देहार्थ के लिए लौकिक कार्यों के लिए ये भाव नहीं है। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा विचार आवे उतना ही नहीं, ऐसा लगना चाहिए भीतर से कि वास्तव में ये भाव है कि मैं भाव के अभाव में आ जाऊं, ऐसी कोई परिस्थिति में पैदा कर लूं, इसलिए मुझे मिला है क्योंकि ऐसी बात मेरे सामने आ गई है। भाव का अभाव कैसे होवे, ऐसी बात मेरे सामने आ गई है, ऐसी बात सबों को नहीं मिलती, ये बात मिलना भी दुर्लभ है, तो मुझे मिल गई है तो मैं इसका सदुपयोग कर लूं। लगता है कि यह भविष्य के लिए मिला है, वरना ऐसी बात कैसे, दूसरों को नहीं मिली मुझे क्यों मिली, ऐसा उनको लग जाता है। बहुत ही मुश्किल से आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षु के लिए वह पर्याप्त है, क्योंकि विशेष की कुछ आवश्यकता या उपयोग या कोई कारण नहीं है, मुझे कोई कारण नहीं है, इससे ज्यादा कोई मुझे कारण दिखता नहीं है। ऐसा जब तक निश्चय न किया जाए, ऐसा निर्धार करने में नहीं आवे कि मुझे इससे कोई ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं, वहां तक तृष्णा नाना प्रकार से आवरण किया करती है, वहां तक तृष्णा के परिणाम आने वाले हैं, और ये आने वाले परिणाम से अपनी आत्मा को आवरण होने वाला है ही, क्योंकि आधार बुद्धि हो जाती है, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, वो चाहिएगा वरना हमारा जीवन कैसा चलेगा, ये आधार बुद्धि, संयोग की ऐसी आधार बुद्धि जीव को स्वयं के आधार को अवलंबन को लेने नहीं देती, क्योंकि विपरीत आधार हो गया, दोनों का आधार हो ही नहीं सकता, स्वरूप का भी आधार मिले और संयोग का भी आधार मिले, दो बात बनने वाली नहीं। अनादि से ये जो पर की आधार बुद्धि है वो छूट जानी चाहिए, यही उपदेश है। तब तक तृष्णा नाना प्रकार से आवरण किया करती है, मतलब अनेक प्रकार की तृष्णा के परिणाम उत्पन्न होंगे और उसी परिणाम से जीव को आवरण होगा, कर्म बंधन होगा और आवरण होगा, स्वभाव पर आवरण आ जाएगा। लौकी के विशेषता में कुछ सारभूतता नहीं है, कितने भी लौकी के विशेषता दिखाने की बुद्धि हो, अभिप्राय हो, लेकिन अपयश नाम, अपयश कीर्ति, ऐसा नाम कर्म का उदय होगा, लोग बुरी बातें कहेंगे, अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, भले ही बोलेंगे संपत्ति इसे क्या हो गया, वो तो ऐसा है और कैसा है, ये बात चलने वाली है। तो आज जो ठीक बोलता है वही आदमी कल ठीक बोलेगा, आज जो अच्छा बोलता है कल वो बुरा बोलेगा, ये तो स्वतंत्र है, अपने अधीन थोड़ा है क्या, तो इसमें कोई सारभूतता नहीं है, इसमें क्या सार है, अगर अच्छा बोल दिया तो भी क्या और बुरा बोल दिया तो भी क्या, मुझे क्या संबंध है इससे, मेरा कोई संबंध इससे नहीं है। अच्छा बोल सकता है, आज अच्छा बोलता है कर बुरा भी बोल सकता है, मेरा तो दोनों से संबंध नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, किसी के कुछ कहने से, मानने से, समझने से मेरे में क्या फर्क पड़ता है, ये तो इनका परिणाम है स्वतंत्र, मेरे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जो ज्ञान स्वरूप हूं वैसा ही वैसा रहता हूं, कोई स्पर्श नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है, वस्तु स्थिति है ये।
युक्ति से विचार बल पैदा नहीं होता।
विचार बल तो क्या है कि बल पैदा करने में तो थोड़ा अपना मात्र ज्ञान स्वरूप है उसको संभालना पड़ता है। मैं मात्र ज्ञान हूं इसकी संभाल करे, सावधानी होवे उसकी, ये सावधानी में बल है। विचार में इतना बल नहीं है, ऐसा विचार नहीं होवे और उल्टा विचार होवे तो कमजोरी बढ़ेगी। विचार में दूसरा प्रतिपक्ष का विचार नहीं आएगा, लेकिन उतना बल नहीं आता है, बल सावधानी से आता है अपने में। ऐसा जब तक निश्चय न किया जाए तब तक तृष्णा नाना प्रकार से आवरण करती है। लौकिक विशेषता में कुछ सारभूतता नहीं है, ऐसा निश्चय किया जाए तो मुश्किल से आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृप्ति रहती है, संतोष रहता है। तो ठीक है, अपने को रोटी मिल गई, अब चिंता क्या करने की है, हमको याचना करने की, दीनता करने की हमारी कोई वृत्ति होनी नहीं चाहिए, दीनता मिट जानी चाहिए। आर्थिक दरिद्रता में जो दीनता आती है, ये दीनता ये सूचित करती है कि धन संपत्ति की लालसा बहुत है। भले ही धन संपत्ति नहीं हो, जिसको संपत्ति हो उसको ही लालसा होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको दीनता आ जाती है उसको भी यही लालच पड़ी है। इसलिए ऐसा निश्चय किया जाए कि मुश्किल से आजीविका जितना मिलता हो तो भी मुझे तो कोई संतोष है, पूरा संतोष है, कोई विशेष की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ आ गया तो पड़ा रहेगा, मुझे क्या जरूरत है इसकी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल से आजीविका जितना न मिलता हो तो भी, अब एक दूसरी बात लेते हैं, आजीविका जितना मिल गया संतोष कर लेना चाहिए। कोई पूर्व कर्म के उदय से उतना ही नहीं मिला, समझो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें भी कमी रह जाए, तो मुमुक्षु को क्या करना चाहिए कि मुमुक्षु को प्राय आर्त ध्यान न होने दे, इसी का नाम मुमुक्षु है। आर्त ध्यान हो जाए तो मुमुक्षुता वहां नहीं है, तो उसको ये प्रयास चलना चाहिए, ये प्रयत्न चलना चाहिए कि इस प्रकार का उदय आया है, मेरे पूर्व के कारण से आप परिणाम के कारण से आया है, मैंने अपराध तो किए ही हैं, अगर निरपराधी होता तो अभी अब जो परिस्थिति मेरे परिणाम की है वो नहीं रहती। इसलिए जो भी कर्म का उदय हो मुझे आर्त ध्यान नहीं करना है, आर्त ध्यान मैंने प्राप्ति के लिए तीव्र परिणाम होना, तीव्र रस वाले परिणाम, आर्त आर्त मैंने दुखी, दुख बहुत दुख होता है, आजीविका नहीं मिलती है इसका बहुत दुख होता है, उसको क्या करें, उनको तो पेट पूर्ता भी नहीं मिलता है, ऐसा लगता है उनको तो पेट पूर्ता भी नहीं मिलता है, ऐसा करके बहुत दुखी हो जाता है। दुखी नहीं होना चाहिए। बनारसी दास कितने मस्त थे, वो तो मस्त थे
जी, कपड़ा छापते थे।
अच्छा, बनारसी दास का भी ऐसा ही था,
जब वो बिल्कुल वैसे हो गए, हालत खराब हो गई, छोड़ करके दिल्ली में का मंदिर में आकर के
बनारसी दास का भी ऐसा, वो भी आगे में पगड़ी बेचते थे,
उन्होंने तो चोरों को गठी
तो ऐसा उसने अपना उसूल बना लिया था कल की चिंता नहीं करने के लिए। क्या है कि जीव मिथ्यात्व अवस्था में कल की चिंता किए बिना नहीं रहता। आज की उसको कोई चिंता नहीं है, आज तो उसको बराबर घी वाली रोटी मिलती है, लेकिन कल की चिंता में आज की रोटी का संतोष भी वो कल की चिंता उसको लेने नहीं देती, हालत इसकी बिगड़ जाती है। तो बनारसी दास ने तो अपना एक सिद्धांत बना दिया कि कल की चिंता कैसे नहीं करें, कि बस आज की पगड़ी का हमारा बिक्री हो गया, करो दुकान बंद। एक घंटे में आठ पगड़ी बेचते थे ऐसा सुना है, आठ पगड़ी बेचना, एक आना या दो आना एक पगड़ी पर वो मुनाफा लेते थे।
जब दुकान में दुकान चला गया
फिर भी आर्त ध्यान नहीं होता, किसी मस्ती थी कि आर्त ध्यान नहीं होता था। संयोग की पूर्व कर्म के अनुसार किसी भी प्रकार की हालात हो जावे, आर्त ध्यान नहीं होना, कैसे ऐसा होता है? वो अपने को संभालते हैं भीतर में कि मेरे में से क्या जाता है, मेरे में क्या आता है, कुछ होता ही नहीं मुझ में। तो ये जो खेल है वो पूर्व कर्म का है, बाहर का जो भी फेरफार है पूर्व कर्म का खेल है। वो देखता हूं मैं जैसे दूसरों का देखता हूँ, ऐसे ये तो दूसरों का है मेरा नहीं। आर्त ध्यान जब होता है कि ये मेरा है, तब अपनत्व होता है, तो आर्त ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं। जैसे दूसरों का भी देखते हैं ना आदमी, ये श्रीमंत हो गया, ये गरीब हो गया, उसकी संपत्ति चली गई, उसको संपत्ति मिल गई, दूसरों का देखते क्या होता है, तो कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना। ऐसा दूसरों का हुआ है, मेरा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो यूं का यूं रहता हूं, बिना फेरफार, अबड़ घट स्वरूप। कैसा अबड़ घट, बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं। इसकी संभाल लेते हुए ज्ञानी को कल की चिंता होती नहीं, पर कल किस कुछ होने वाला है, न ज्ञानी का कुछ होने वाला न अज्ञानी का कुछ होने वाला। तो जैसा अपनी विचारधारा, अपनी मस्ती में रहे वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी, और दीनता में आ जाए वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी। तो किस कॉम्प्लेक्स में रहना है, एक में दुख है एक में सुख है, पसंद करो। परिस्थिति तो जो है सो है, अपने को कहाँ रहना कैसे रहना ये हमारी समझ पर आधारित है, जैसी हमारी समझ ऐसा रहना होगा। चोरनी पत्नी एम कीधुं के तू क्या चोरी करी है, वो चोरी करवा गयो तो चोरी करतो तो घासड़ी बांधतो तो एने घासड़ी बांधा उपड़ा भी के ले जा भाई साहब। चोरी करवा वाला ने चोर ने घासड़ी बांधावी ने उपड़ावी एने कि तू घणो मोटी आ घासड़ी बांधी से उपाड़ी हतो ने ले तने उपड़ावो। घरे आवीने वात करी एनी पत्नी ने કે આ તો આવો મજા આવા પણ જેના ઘરે ગયો એને જ મને મદદ કરી, તો કે પેલા ભગત ને ક્યાં ગયો લાગે છે, પગટ નામથી પ્રખ્યાત હોય ને, આ દિયા દિયા પાછું દિયા હોય, એનું ન લિયા હોય કે એનું ન ચોરાય કે દિયા લઈને પાછું દિયા હોય, તો કુદરત શું કરે છે, એનું નામ કુદરત. સબકુજી બેંસરી કા એક દ્રષ્ટાંત આતા હૈ, વો બહોત શુરુ સે બહોત વિનમ્ર પ્રકૃતિ કે થે. તો વઢવાન સિટી મેં જો નદી હૈ વહાં પાણી ભરને કો જાતે હૈ, પીને કા પાણી નદી સે ભરતે હૈ, તો સબ જો ઔરતે હૈ વો પાણી ભરતી હૈ વહાં. વો ગરમી કે દિન મેં ક્યા હૈ કે કહીં પાણી નિકલે વહાં સબ ભરે, એક હી જગહ પે ભરને કા હોતા હૈ. જ્યાં અમારી ગુજરાતીમાં વીરડા કહેતા હૈ, વીરડી બનાવે, તો વહાં તો બહોત સે ઔરતે હોય, વો જાકર ખડી રહે જાવે કે સબ ભર લે બાદ મેં મેં કરૂંગા. હા પનિયારી, જો પનિયારી સબ ઔરતે હૈ વો સબ ઇકઠે હોય તો વો તો પીછે રહે જાય, કોઈ ઉસમેં શામિલ નહીં હોય, મેં પહેલે ભર લું મેં ભર લું મેં ભર લું, ખચા ખચી હોય નહીં. તો ફિર પતા ચલ ગયા ये सब पनियारियों को कि ये तो शाम तक बोलने वाली, तो सब बोले भाई इनको भरने दो, पहले इनको भरने दो, हम लोग तो भर लेंगे जैसे कैसे भी, लेकिन इनको पहले भरने दो. ये कुदरत होवे नहीं होवे उनको कुछ फेर नहीं पड़ता, जो समझे उसमें कोई फेर नहीं पड़ता. अनुकूलता मिली तो क्या हो गया, प्रतिकूलता आई तो क्या हो गया. गुरुदेव तो ये कहते थे कि सारा जगत हमें अनुकूल हो जाए तो हमारे आत्मा में क्या आने वाला है, हमें क्या फायदा, इससे हमें क्या मिलता है कि एक गुण में परिपूर्ण, सभी गुण परिपूर्ण होने से उसमें कोई आने की गुंजाइश नहीं है, मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, सब बाहर का बाहर है. और सारा विश्व प्रतिकूल हो जाए, एक दो आदमी नहीं सारा जगत प्रतिकूल हो जाए, तो हमारे में से क्या लेने वाले हैं, हमारा एक गुण को कोई खंडित नहीं कर सकता, हमारा एक प्रदेश को कोई खंडित कर सकता नहीं. बस फिर चिंता काहे की, किस बात की चिंता है, फिर अव्याबाध स्वरूप को कोई बाधा डाल सकता नहीं. हाँ एक दिन ऐसा भी था कि सारे समाज गुरुदेव से विरुद्ध थे, तीन चार आदमी इनके साथ रहे, चार आदमी साथ रहे थे, दो हमारे रामपुर के दो वधवान के, बस चार थे साथ में, कोई नहीं थे. गुरुदेव ने बोला हमें तो हमारा आत्मा का करना है, कोई साथ रहे नहीं रहे इससे हमें क्या. और जब हजारों आदमी आने लगे तो गुरुदेव ये बोलते थे कि ये सब आते थे इसलिए क्या हो गया, आने लगे इसलिए क्या हो गया, तो एक पुण्य योग है तो आते हैं, पहचान थोड़ी होती है सबको. क्या बोलते थे कि सब पहचानते नहीं है, ये तो पुण्य योग है इसलिए इकट्ठे होते हैं. न पाप का योग मेरा है न पुण्य का योग भी मेरा है, यहां से लेते हैं. इसकी कोई विशेषता नहीं लगती, सारभूतता नहीं लगती, कीमत नहीं आती. नहीं हो
तो आराम से
कैसे निकलेंगे यहाँ से, छूटेंगे कैसे. हमें ये लगना चाहिए कि हमारा भाव में हमें क्या करना है, इस भाव क्यों मिला है, हमारा ध्येय क्या है जीवन का, हम जीते हैं इस भाव में, क्या ध्येय है हमारा जीवन का. कोई संपत्ति प्राप्त करते रहना, मिलाते रहना, प्राप्त करते रहना, यही क्या जीवन का ध्येय है. तो सारी दुनिया पशु पक्षी सब ऐसा ही इसके पीछे लगे हुए हैं. ये जीवन ही पशुवत है, तो हमारा जीवन हमारा आत्मकल्याण के लिए ये जीवन है ऐसा लगे तो ही अर्थ ध्यान नहीं हो, वरना तो अर्थ ध्यान हुए बिना. मैंने जहाँ तक ध्येय नहीं बदलता वहाँ तक लाइन नहीं बदलती। परिणाम की जो लाइन है, लाइन दोरी है, सारे परिणाम ध्येय के दौरान चलने वाला है। संसार का ध्येय अनादि का है, जीव का है, तो उसके दौरान चलता है सारे परिणाम। अगर हमने ध्येय बदल दिया कि हमको तो परिपूर्ण शुद्धि चाहिए, परिपूर्ण सुख चाहिए, परिपूर्ण निर्मलता पवित्रता चाहिए, तो परिणाम इसी के ओर चलने लगेंगे। फिर चलने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़े दूसरी बात है, क्योंकि बहुत से ट्रैफिक आता है, वाहन चलाने वाले को भी उसमें गति को स्लो फास्ट करना पड़ता है, हो सकता है। लेकिन जहाँ पहुँचना है वही दिशा में हमें चलना है, दूसरी दिशा में हमें नहीं चलना है, ये बात पक्की हो जानी चाहिए। आजीविका जितना न मिलता हो तो भी मिलता हो ऐसी बात तो ले, और आजीविका में कमी को यथा धर्म पूर्ण करने की मंद कल्पना करे, और जो आजीविका की पूर्ति करनी हो, कमी रहती है उसमें पूर्ति करते हो, पूर्ति करनी हो तो यथा धर्म, मैंने नीति धर्म नहीं छोड़े, किसी का हम ले ले में या किसी के का साथ छित्रपिंडी करे, किसी को वो कर दे, किसी को वो कर दे, ऐसी कोई बात होने नहीं चाहिए। जैसे हमारे परिणाम में मलिनता बढ़ जाए ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए। यथा धर्म, मैंने यथा नीति धर्म ऐसा लेना है, यहाँ पर पूर्ण करने की, ये कमी को पूर्ण करने की कल्पना करे, कल्पना है ये, वो भी मंद कल्पना करे, तीव्र कल्पना नहीं करे, तीव्र कल्पना में अनिति हो जाएगी, नीति नहीं रहेगी। सबों को स्वार्थ तो है संसार में कि भी हमको हमारी जरूरत है, हमें हमारी जरूरत है, हमें हमारी जरूरत है, लेकिन जब ये स्वार्थ तीव्र हो जाता है तब नीति छूट जाती है, तब नीति रहती नहीं है, मैंने पाप बढ़ जाता है, अनिति से धन कमाने की या संपत्ति प्राप्त करने का परिणाम तीव्र हो जाता है, ऐसा मुमुक्षों को करना नहीं चाहिए। इत्यादि प्रकार से वर्ताव करते हुए तृष्णा का पराभव होना योग्य दिखता है। तृष्णा का पराभव करना वैसे तो आसान नहीं है, फिर भी अगर लौकिक विशेषता और भोग में अनासक्ति, ये दो परिणाम के दो पहलू है, उसको अगर बराबर ठीक करें तो ये तृष्णा का पराभव हो सकता है। बहुत मैंने उनके तो एक एक शब्द में बहुत भाव भरे हैं, बहुत भाव तो बहुत भरे हैं, तो जिसको ग्रहण करना है, सत्पुरुष के वचन को ग्रहण करना है तो अपने जो भलाई के लिए करना है, अपने हित के लिए करना है, हित को मुख्य करे, जितने हित की मुख्यता तीव्रता होगी उतना ग्रहण होगा, वरना तो समझ में आएगा शब्द, अर्थ भी समझ में आएगा लेकिन ग्रहण करना कोई दूसरी बात हो जाती है। तो जिसको तृष्णा का पराभव करना हो, जो यहाँ बात कही उसकी गहराई में जाना चाहिए, जैसे किसी को ये लगे कि मेरे तृष्णा का परिणाम बहुत है, मैं कैसे उसको शांत करूँ, तो उसको ये विचार करना कि तेरी जरूरत कितनी है, आवश्यकताएं कितनी है, आवश्यकता को कम करो। हमारे पुराने जमाने में तो ये कहावत थी कि जितनी जरूरत ज्यादा उतना पाप ज्यादा, हमारे ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो ऐसा कहते थे, जितनी जरूरत ज्यादा उतना पाप ज्यादा, जितनी जरूरत कम उतना पाप कम होगा, और लौकिक दृष्टि में लौकिक बुद्धि में भी उतना समझ में आता है। ये तो पारलौकिक ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है वो तो उसमें तो सम्यक प्रकार से तृष्णा का पराभव कैसे करे, तृष्णा का नाश कैसे करे, कि हमें हमारा भोग उपभोग की वृत्ति जो है उसमें जो आसक्ति है, वो आसक्ति जहाँ तक उसका रस नहीं मिटेगा, उसका रस कम नहीं होगा, वहाँ तक तृष्णा कम होने वाली नहीं है। तृष्णा के मूल को छेदने की बात है ये। तृष्णा किस आधार पर खड़ी है इसका विचार चलता है कि इसके दो आधार हैं, एक तो भोग में आसक्ति और एक लौकिक मान मोटाई विशेषता दिखाने की वृत्ति। ये दो आधार से तृष्णा पनपती है, उसका डेवलपमेंट होता है, बड़ी हो जाती है। ये दो मुद्दा संभाल लिया मुमुक्षु ने अपने जीवन में कि हमें कोई लौकिक विशेषता नहीं करनी है, लोग हमें जाने नहीं जाने हमें इसका कोई काम नहीं है। लोग जाने तो उसको अच्छा लगता है और ये विशेषता मान मोटाई को छोड़ दे तो भगवान जाने के ये बड़ा अच्छा आत्मार्थी है, तो उसको इसमें कोई अच्छा नहीं लगता है। तुझे तेरी नोंद लौकिक जनों के ज्ञान में करानी है या भगवान के ज्ञान में करानी है, किसके ज्ञान में तुझे करानी है? जब सही रास्ते पे आएगा तो अनंत सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में ही आएगा कि अब ये मेरे रास्ते पे आ रहा है, अब ये मेरे रास्ते पे आ रहा है, तो इसकी तुझे मोटाई चाहिए? या दूसरा ऐसा समझे कि ये पैसे वाला है, बहुत संपत्ति वाला है, उसको बहुत बहुत है, वो भी है, ये चीज भी है, वो चीज भी है, उसको मकान भी है, हीरे भी हैं, जवेरात भी है, गाड़ी भी है, आबरू कीर्ति भी है, परिवार भी है, वो भी है, बहुत सी चीजें हैं। तो वो तो आज है ऐसा करता है, कल दूसरी भी बात बोलने वाला है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं कि भगवान के ज्ञान में कोई नोंद हो जावे ऐसी बात करने, तो अगर तुझे नोंद कराने की बात हो तो सम्यक प्रकार में तो वो भी नहीं कि कोई जाने नहीं जाने इससे मेरे में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इंद्रदृष्टि प्रकाश में आता है कि फूल बाग में हो या जंगल में, इससे कोई इसकी कीमत बढ़ती घटती नहीं है। कोई सूंघे कोई मत सूंघे इससे भी कोई इसकी उसकी सुंदरता में फर्क पड़ता नहीं है। तो मुझे कोई जानेगा नहीं जानेगा, कैसा जानेगा, उल्टा जानेगा सुल्टा जानेगा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? दूसरों की निंदा प्रशंसा के कारण से आत्मार्थी को कोई कार्य करना नहीं होता। निंदा प्रशंसा के लिए प्रवृत्ति करना ये आत्मार्थियों का काम नहीं है कि हमारी प्रशंसा बढ़ जाए इसलिए हम कुछ काम करें, या हमारी कोई निंदा नहीं करे इसलिए हम काम करें। ये लोक संगना है, कातिल जहर है, उसको खाना नहीं चाहिए, चखना भी नहीं चाहिए, खाना तो नहीं चाहिए चखना भी नहीं चाहिए। इत्यादि प्रकार से बर्ताव करते हुए तृष्णा का पराभव होना योग्य दिखता है। ऐसे प्रकार से अगर हम विचार करें, नहीं लिखा इधर क्या लिखा, इत्यादि प्रकार से विचार करते हुए नहीं बर्ताव करते हुए ऐसा लेते हैं, परिणमन की बात लेते हैं, बिना परिणमन अकेला विचार काम में नहीं आता। बहुधा सत्पुरुष के वचन से आध्यात्मिक शास्त्र भी आत्मा का आत्मज्ञान का हेतु होता है, क्योंकि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं रहता, सत्पुरुष में रहता है। देखिए गजब की बात लिखी है, बताइए ये जगह बिना ये बात कहाँ मिलती है? कोई और शास्त्र में पढ़ने को ये बात नहीं मिलेगी, ऐसी बात मिलती है। ये सत्पुरुषों की एक विशेषता है कि इनके वचन ही शास्त्र हो जाते हैं, दूसरे शास्त्र में होवे नहीं होवे इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिसके पास क्षोभशम है उनको ऐसा लगता है कि हम तो शास्त्र पढ़ करके, समय सार को पढ़ करके, ऐसे शास्त्र को पढ़ करके हम तो हमारा कल्याण कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सत्पुरुष के वचन से वो आध्यात्मिक शास्त्र आत्मज्ञान का हेतु होता है। अगर सत्पुरुष समझाता है तो 2000 साल से दिगंबर संप्रदाय में समय सार पढ़ा था, लेकिन सत्पुरुष के वचन से आत्मज्ञान का हेतु हुआ, गुरुदेव ने इसको खोला, और भी आगे ज्ञानी हुए उनको खोला, इसके वचन से दूसरों को ज्ञान हुआ, ऐसा कहते हैं। सीधा किसी को शास्त्र से ज्ञान हो जाए ऐसा होने वाला
नहीं है,
नहीं है। ये तो ये बात है कि रोग होवे और रोग मिटाने की किताब पढ़ लें लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएं तो क्या होगा, मर जाएगा। ऐसे भव रोग हुआ, सबसे बड़ा रोग है, अनादि काल से है, पुराना है, मैंने मोस्ट क्रॉनिक है, लंबा रोग चले उसको क्रॉनिक कहते हैं ना, कितना पुराना है कि अनादि काल से है। अब हमें इसका ग्रंथ पढ़ना है, हमें आत्मज्ञानी पुरुष सत्पुरुष के पास नहीं जाना है, कहते हैं कि मर जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। क्योंकि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं रहता, वहां आत्मा है ही नहीं, शास्त्र में आत्मा नहीं है, परमार्थ आत्मा तो सत्पुरुष में रहता है, ये सजीवन मूर्ति है। सजीवन मूर्ति से जो काम होता है ये ग्रंथ से काम होने वाला नहीं है, इसलिए काम नहीं होता। बहुत वास्तविक बात है, इसमें वास्तविकता बहुत है। ये वास्तविकता ऐसी है कि जो काम करना है वो लिखने में आ नहीं सकता, जो भी सत्पुरुष मार्ग को बताएंगे वो बताने वाले सत्पुरुष के वाणी और चेष्टा में जिस हद तक ये बात आती है वो लेखनी में उतर नहीं सकती। तो खुद ही कहते हैं कि हमारी लेखनी में इतनी नहीं उतरती, फिर अज्ञानी की लेखनी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन खुद की लेखनी में उतनी बात नहीं आती जितनी वाणी में और चेष्टा में आती। इसलिए अगर इसका तफावत नहीं समझता है और अभिप्राय गलत रखता है कि भले ही हम सत्पुरुष हो तो हमें वहां नहीं जाएंगे, हम तो घर पे बैठ करके पुस्तक आचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे, सत्पुरुष तो चौथे गुण स्थान वाले हैं और हमारे पास जो ग्रंथ है वो तो आचार्यों के हैं। ये तेरी आत्मार्थिकता के खिलाफ बात है, विरुद्ध अभिप्राय है, ये सरासर विरुद्ध है, ये ऐसी बात है। तो 661 में वो कह गए हैं कि अगर ऐसे सत्पुरुष के सत्संग को छोड़ करके अगर कोई ग्रंथ का आधार लेता है, शास्त्र का आधार लेता है, या बराबरी भी करता है, विशेषता कर लेता है, नहीं बराबरी भी करता है कि ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी ज्ञानी की वाणी, ये भी ज्ञानी की वाणी, उसको अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, अशुभ प्रकार का ये शास्त्रीय अभिनिवेश है, शुभ प्रकार का मंद कषाय वाला भी नहीं है, ये तीव्र कषाय वाला शास्त्र अभिनिवेश है, क्योंकि प्रत्यक्ष सत्पुरुष का अनादर हुआ उसमें। ये जो डिफरेंस नहीं समझता, कि उसमें क्या परमार्थ है, वो नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? कि उसके परिणमन में आत्मार्थिता आई नहीं। आत्मार्थिता के सद्भाव में ऐसा अविवेक कभी होता नहीं है। ऐसी बात है। देखिए क्या कहते हैं, बहुधा सत्पुरुष के वचन से आध्यात्मिक शास्त्र भी सीधा नहीं, सत्पुरुष के सानिध्य में, इसकी आज्ञा में, इसके मार्गदर्शन के अंदर में, अंडर में आध्यात्मिक शास्त्र भी आत्मज्ञान का हेतु होता है। क्योंकि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं रहता, सत्पुरुष में रहता है। परमार्थ आत्मा सत्पुरुष में रहता है, शास्त्र में नहीं रहता है। रोग होवे, कैंसर होवे, ये तो कैंसर का भी दादा है, बाप है भव रोग। तो कैंसर होवे और ऐसा विचार करे कि कैंसर का ग्रंथ मंगालो बाजार में से, वो मेडिकल लिटरेचर बेचने वाले होते हैं ना, सब प्रकार के मेडिकल बुक्स मिलती है उनके यहाँ से, सभी पथियों की मिले, एक पथी की नहीं मिले, तीनों पथियों की एक दुकान में से मिले। डॉक्टर के पास हमें नहीं जाना है, इसमें से पढ़ करके हम हमारा इलाज कर लेंगे। अगर ऐसी किसी की बुद्धि हो तो सिवा मूर्खता कुछ नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा। क्या होगा? इलाज तो कर पाएगा नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो मर जाएगा, ये बात हो जाएगी, ये मूर्खता है। ऐसे ही सत्पुरुष के पास नहीं जाना और शास्त्र की मुख्यता कर लेना, ये अविवेक है, विवेक नहीं है। उसको अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश 661 के पत्र में बोल दिया। मुमुक्षु को यदि किसी सत्पुरुष का आश्रय प्राप्त हुआ हो तो प्राय ज्ञान की याचना करने योग्य नहीं है, मात्र तथारूप वैराग्य उपशम आदि प्राप्त करने का उपाय करना योग्य है। यह योग्य प्रकार से सिद्ध होने पर ज्ञानी का उपदेश सुलभता से परिणमित होता है और यथार्थ विचार और ज्ञान का हेतु होता है। ये कोई बहुत सुंदर बात कर दी है कि मुमुक्षु को यदि किसी सत्पुरुष मिल गया समझो, तो उनको ज्ञान की याचना नहीं करनी। ये प्रश्न हमने पूज्य बेंसरी से माता जी को पूछा था कि श्रीमद जी ऐसे लिखते हैं कि सत्पुरुष मिले तो ज्ञान की याचना नहीं करना, हम तो आप लोगों को प्रश्न, आपको प्रश्न बार बार पूछते हैं, ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन श्रीमद जी तो मना करते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर सत्पुरुष मिले, थोड़ी नजदीक तो प्राय ज्ञान की याचना नहीं करना। और वैराग्य, तथारूप वैराग्य क्या लिखा है? तथारूप वैराग्य और उपशम आदि की प्राप्ति प्राप्त करने का उपाय करना योग्य है, मैंने योग्यता में आने का प्रयास करना। सत्पुरुष मिले और योग्यता नहीं हुए, कितना भी प्रश्न पूछे, कितना भी सुने, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी और नहीं हुई है, ये प्रसिद्ध बात है। क्यों? कि योग्यता नहीं थी हमारी। तो पहले हम योग्यता का प्रयास करें, तो ज्ञान की तो मूर्ति है ये, इनके तो त्रियोग में मन वचन काया के योग में ये चीज भरी पड़ी है, उभर के बाहर आती है, परिणमन होना सुलभ हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, कि अगर ये योग्य प्रकार से सिद्ध हुआ, मैंने योग्यता सिद्ध होगी, प्राप्त होगी, ज्ञानी का उपदेश मिलता नहीं है, सुलभता से परिणमित हो जाता है। हम क्या समझते हैं कि हमने ज्ञानी को प्रश्न पूछा, ज्ञानी ने हमको उत्तर दिया, हमें ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञानी ने हमको ज्ञान दिया, लेकिन परिणमन हुआ क्या? उत्तर सुना तो मान लिया कि ज्ञान मिला, लेकिन परिणमित नहीं हुआ तो ज्ञान मिला नहीं है, कुछ धारणा हुई है, वो भी कुछ काल तक टेम्पररी, थोड़े काल में वो विस्मृत हो जाएगी। स्मरण का विस्मरण होना ये संयोग का निश्चित वियोग के रूप में है। स्मरण एक संयोग है, इसका वियोग भी निश्चित है, इसलिए परिणमन हो जाइए। अगर परिणमन हो जाए तो स्मृति विस्मृति से पार एक ऐसी दशा हो जाती है कि जिसमें स्मरण करने की कोई अपेक्षा नहीं होती, स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आत्मा का हम स्मरण करें, हमारे स्वरूप का स्मरण करें, हमारे न्याय का हम स्मरण करें, ऐसी बात नहीं रहती। हाँ, माता जी ने ये बताया कि बात ठीक है। क्या कहा? कि ये बात ठीक है, सतपुरुष के सानिध्य में जो आता है तो सतपुरुष का हृदय में जो है इसकी जो मुख्यता है उसको तो आत्मा कल्याण की, आत्मज्ञान की, सम्यक दर्शन आदि की तो मुख्यता होती है। इनकी वाणी में तो वो बात आए बिना रहता ही नहीं है, लेकिन योग्यता नहीं है तो बात कितनी भी आती है कुछ मिलता नहीं है, और योग्यता थोड़ी हुए तो थोड़े में से ज़्यादा ग्रहण कर लेता है, तो उसको मांगने की तो जरूरत ही नहीं रहती। सतपुरुष तो एक ऐसा दानी है कि जिस पे जिसके पास मांगने की जरूरत होती नहीं, रहती नहीं, ऐसे दानी है। जगत के दानी तो ऐसे होते हैं कि उसके पास दान लेने के जाओ तो वो लिखावे कि लिखो भाई। इसलिए हमारे यहाँ वो पद्धति हम नहीं रखते कि किसी के पास दान लेने को जाना, हमें मांगने को जाना, याचना करना, ये पद्धति गुरुदेव ने मिटा दी। अगर कोई मांगते तो गुरुदेव उसकी कड़ी टिप्पणी कर लेते। ऐसा हुआ एक जगह से ये बात निकली, पत्रिका निकली हमारे मंडल में से कि कोई ज्ञान, कोई क्या बोलते हैं जिसको दान देते हैं उसको क्या कहते हैं, सखी दाता, गुजराती में सखी दाता शब्द हमने पढ़ा है। सखी दाता को हम अपील करते हैं हमारा ये शुभ कार्य में मदद करें, हमको दान भेजें। गुरुदेव तो गर्म हो गए इस बात पर कि ये भीख ना, भीख मांगने का धंधा क्यों करते हैं ये लोग, क्या बोले हैं, ऐसा भीख मांगने का धंधा क्यों करते हैं, किसने बोला तुम्हें ये कार्य करना है, नहीं करो मत करो। अगर तुम्हें समर्पण बुद्धि नहीं होवे, अपना धन का समर्पण करने का अपना अभिप्राय या भावना नहीं होवे, और दूसरों को मांग मांग करके हमको ये बनाना, हमको वो बनाना, हमको वो बनाना, ये पद्धति गलत है, ऐसी दीनता नहीं करनी है। याचना का मार्ग नहीं है, वितरकता का मार्ग नहीं है, दूसरों को पैसा मांगने को जावे और ये पैसा इकट्ठा करके हमने वो बनाया, फिर क्या बोले, हमने वो बनाया, देखो हमने कितना परिश्रम लिया, हमने पैसा इकट्ठा किया और हमने ये बनाया, ये बात इस मार्ग में अनुकूल नहीं है बिल्कुल। इसलिए अपने यहाँ ये गुरुदेव ने ये परंपरा चला ली है कि जो भी जिसको देना है, जिसको अपने संपत्ति या धन पर ममत्व कम करना है, मोह को कम करना है, दे तो भले, नहीं दे तो भी भले, हमें तो कुछ मांगना नहीं है, तो ये पद्धति सही है। हाँ हाँ, करोड़ों आ गए बिना बिना मांगे आ गए, ऐसा ही होना चाहिए। खुद का समर्पण कितना, पहले ये बात है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तो अंग्रेज लोग थे ना, उतने भी उतनी अक्ल तो थी, बुद्धि उतनी भी बुद्धि तो उन लोगों में थी, कि चैरिटी बिगिन सेट होम, अपने घर से चैरिटी शुरू होती है। तो पहला तो अपना नाम लिखे कि भाई मैं तो मेरा पूरा पूरा समर्पण करता हूँ। जब उनको दोष नहीं है, उतना दोष नहीं है, फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विवेक करना चाहिए कि अगर समाज में ऐसे संपत्ति वाले या ऐसे समर्पण बुद्धि वाले लोग नहीं है तो ये साहस नहीं करना चाहिए, अगर हो तो ऐसा साहस करना चाहिए। लेकिन फिर किसी के परिणाम नहीं हुए और फिर जबरन निकाले, नहीं नहीं साहब आपको आपका 1000 नहीं लिखेंगे, 5000 लिखेंगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी भावना हो तो लिखा ले, नहीं भावना हो तो उनका नुकसान उसको है, भावना वाले का लाभ उसको है, नहीं भावना वाले का नुकसान भी उसको है। अपन क्यों उसका आग्रह रखे? तो इस तरह से अपनी योग्यता होवे, ये तो ज्ञानी दानी है ये बात चली कि उसके पास तो मांगना पड़ता नहीं है। योग्यता वाले को सहज इनके सानिध्य में, इनके आश्रय में, इनके चरण में निवास करने वाले को उनको ऐसा मिल जाता है, योग्यता तैयार करने वाले को जो अनंत काल में नहीं मिला वैसा मिल जाता है। कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्या सतपुरुष को ये पता नहीं है कि ये क्यों इधर बैठा आकर के बैठ गया है? क्या सतपुरुष को ये बात का पता नहीं है कि इधर आके क्यों बैठा है, दूसरी जगह क्यों नहीं गया है वो? है दूसरी जगह छोड़ करके, बहुत सी जगह है, आश्रम तो बहुत है विश्व में, दो दो माइल पर आश्रम है हिंदुस्तान में, तो इधर क्यों आया मेरे पास? इसको लगा है कि मेरा कल्याण होने का कोई संभव है तो निमित्त तत्व इधर है, निमित्त को भी पहचाना। जो निमित्त को नहीं पहचाना वो उपादान को तो पहचानेगा भी कहां से? तो उनको तो पता है कि वो जिस भावना से आया है, इस भावना की पूर्ति मैं नहीं करूं, इतनी कठोरता क्या सतपुरुष में होती है कभी? ये संभव ही नहीं है। जो बिना मांगे ज्ञान का दान देते हैं, ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इतना अर्पण समर्पण बुद्धि से सर्वस्व समर्पण करने के लिए आया है, उनको कुछ नहीं मिले आत्मकल्याण के लिए, उसको माल नहीं मिले, ऐसा सत्पुरुष होते नहीं है। इसलिए उसको मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, ये बताते हैं कि उसको मांगने की कोई आवश्यकता। मुमुक्षु को यदि सत्पुरुष का आश्रय प्राप्त हुआ हो तो उसको ज्ञान की याचना प्राय करना योग्य, कभी कोई बात पूछ ले, कोई पाबंदी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि उसको कोई प्रश्न पूछना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछ ले कभी अपनी अंतर जिज्ञासा हो ले तो। लेकिन प्राय याचना नहीं करनी है, अपनी योग्यता पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ से ज्ञान ले लूं, सतगुरु से ज्ञान ले लूं, ज्ञान ले लूं, पर कहाँ रखेगा तू? ज्ञान तो वो देंगे, तेरे पास पात्र तो होना चाहिए रखने के लिए, पात्र नहीं है, ये ज्ञान रहने वाला नहीं है, कहाँ रहेगा ये? तो पात्रता सिद्ध होने पर ज्ञान का उपदेश सुलभता से परिणमित हो जाता है और यथार्थ विचार और ज्ञान का हेतु होता है। जब तक कम उपाधि वाले क्षेत्र में आजीविका चलती हो, मैंने छोटे गांव में, कम उपाधि वाले मैंने छोटे गांव में आजीविका चलती हो, तब तक विशेष प्राप्त करने की कल्पना से, कल्पना ये भी कल्पना है, विचार को कल्पना कहते हैं, मुमुक्षु को किसी एक विशेष अलौकिक हेतु के बिना अगर सत्पुरुष का यहाँ विराजमान पड़ा नहीं हो तो अधिक उपाधि वाले क्षेत्र में जाना योग्य नहीं है। अगर कोई सत्पुरुष का निवास वहां होता हो तो ये अलौकिक हेतु है, हम भी वहां चले जाएं, कुछ नौकरी कर लेंगे, धंधा कर लेंगे, लेकिन हमको सत्समागम तो मिलेगा, दूसरी बात है। वरना भावनगर छोड़ करके बंबई में जाना नहीं है ऐसा कहते हैं, या सोनगढ़ छोड़ करके भावनगर में जाना नहीं है। ये कम उपाधि वाला क्षेत्र है, छोटा गांव है वो कम उपाधि वाला क्षेत्र है, बड़ा गांव है ज्यादा उपाधि वाला क्षेत्र है। कोई अलौकिक हेतु के बिना ऐसे छोटे क्षेत्र को छोड़ करके उपाधि बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वृत्ति उपाधि वाले क्षेत्र में वृत्ति का ठिकाना नहीं रहता। भोग भोग के साधन वहां बहुत उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उससे बहुत सी सदवृत्तियां मंद पड़ जाती है। क्षेत्र का इतना निमित्त नैमित्तिक प्रभाव आता है कि सदवृत्तियां उसमें चली जाती है, मंद पड़ जाती है, अथवा सदवृत्ति वर्धमान होनी चाहिए वो वर्धमान होने नहीं होती, असदवृत्ति हो जाती है। ये भी देखो कितना अच्छा मार्गदर्शन दिया है योग वासिष्ठ के पहले दो प्रकरण, और वैसे ग्रंथों का मुमुक्षों को विशेष ध्यान करना योग्य है। देखो मुमुक्षों को ये आज्ञा दी है, तुम पहले दो प्रकरण पढ़ो, उसका मुमुक्षुता क्या चीज है, वैराग्य क्या चीज है, दो बात है दो प्रकरण में, मुमुक्षुता का स्वरूप और वैराग्य का स्वरूप, ये बात दिया है।